ये आकाशवाणी है। अब आप भवतारिणी से समाचार सुनिए। हॉकी टीम ने पेरिस ओलंपिक में भारत को चौथा कांस्य पदक दिलाया है। भारत ने स्पेन को 2-1 से हराकर 50 साल बाद ओलंपिक में लगातार दूसरी बार पदक जीता है। पेरिस ओलंपिक में भारतीय पहलवान अमन शेरावत आज रात पुरुषों के 57 किलोग्राम सेमीफाइनल के जापान के इडी हिचुगी से हार गए। भारतीय पहलवान को तकनीकी श्रेष्ठता के आधार पर हार का सामना करना पड़ा, क्योंकि मुकाबला शुरू होने के कुछ ही मिनटों के भीतर उसका प्रतिद्वंदी 10-0 पर पहुंच गया। कल कांस्य पदक के लिए अमन का मुकाबला प्यूर्टोरिको के पोर्टो के डेरियन क्रूज से होगा। टोक्यो 2020 में भारत के स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा देर रात 11:55 पर होने वाले पुरुषों के भाला फेंक फाइनल में फिर से स्वर्ण के लिए प्रतिस्पर्धा करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय हॉकी टीम को कांस्य पदक जीतने पर बधाई दी है। राष्ट्रपति ने कहा कि यह जीत भारत के लिए गर्व का विषय है और भारतीय हॉकी टीम फिर से मजबूत होने के लिए प्रशंसा की पात्र है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने पेरिस ओलंपिक 2024 में कांस्य पदक जीतने के लिए भारतीय पुरुष हॉकी टीम को बधाई दी है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में उपराष्ट्रपति ने उन सभी खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दी हैं जिन्होंने विश्व मंच पर भारत को गौरवान्वित किया है। श्री धनखड़ ने टीम को भविष्य के सभी प्रयासों में निरंतर सफलता की कामना की है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज ब्रिटेन के विदेश मंत्री डेविड लैमी के साथ बांग्लादेश और पश्चिम एशिया की स्थिति पर चर्चा की। डॉ जयशंकर ने श्री डेविड के साथ फोन पर बांग्लादेश और पश्चिम एशिया की स्थिति पर बातचीत की। इस बीच ब्रिटेन में धुर दक्षिणपंथी प्रदर्शनों का मुकाबला करने के लिए हजारों नस्लवाद विरोधी प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतर आए हैं। साउथपोर्ट में चाकूबाजी के बाद कई दिनों की अशांति के बीच देश भर में हजारों लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बांग्लादेश में नई जिम्मेवारी संभालने के लिए प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस को शुभकामनाएं दी हैं। एक सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने बांग्लादेश में हिंदुओं और अन्य सभी अल्पसंख्यक समुदायों की सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए सामान्य स्थिति में जल्द वापसी की आशा की है। श्री मोदी ने कहा कि भारत शांति, सुरक्षा और विकास के लिए दोनों देशों के लोगों की साझा आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए बांग्लादेश के साथ काम करने के लिए प्रतिबद्ध है। ढाका में भारतीय उच्चायोग बांग्लादेश से वापस आने वाले भारतीय नागरिकों के संपर्क में है। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि 9,000 विद्यार्थियों सहित लगभग 19,000 भारतीय नागरिक इस समय बांग्लादेश में हैं। सरकार भारतीय नागरिकों की सुरक्षा तय करने के लिए उच्चायोग के साथ लगातार संपर्क में है। संसद ने वित्त विधेयक, विनियोग विधेयक और जम्मू कश्मीर विनियोग विधेयक पारित कर दिया है। राज्यसभा ने इन विधेयकों को आज पारित किया। लोकसभा इसे पहले ही पारित कर चुकी है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि सरकार कोविड के बाद से लगातार पूंजीगत व्यय पर ध्यान देकर अधिक से अधिक राशि खर्च कर रही है। राज्यसभा में उन्होंने कहा कि वर्ष 2023-24 में प्रभावी पूंजीगत व्यय 15,02,000 करोड़ रुपए यानी 18% रहा है। वित्त मंत्री आज राज्यसभा में वित्त विधेयक, विनियोग विधेयक और जम्मू कश्मीर विनियोग विधेयक पर चर्चा का जवाब दे रही थी। वक्फ संशोधन विधेयक 2024 को संयुक्त संसदीय समिति को भेज दिया गया है। अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने लोकसभा में विधेयक पेश करते हुए कहा कि सरकार प्रस्तावित कानून आगे की जांच के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के पास एक विधेयक के बारे में छिपाने के लिए कुछ भी नहीं है। इस विधेयक का उद्देश्य धार्मिक निकाय के कामकाज में हस्तक्षेप करना नहीं है। उन्होंने कहा कि यह कानून सच्चर समिति और पिछली सरकार की विभिन्न समितियों की सिफारिशों के अनुसार लाया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू वेलिंगटन में सफल द्विपक्षीय बैठकों के बाद आज शाम ऑकलैंड पहुंची। उन्होंने कहा कि द्विपक्षीय संबंधों में एक नई प्रगति हुई है जो उच्च स्तरीय संपर्कों और विभिन्न क्षेत्रों में बढ़ती भागीदारी का प्रतीक है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।